नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एंड्रू ली की पुस्तक हाउ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी आर्थिक इतिहास की संक्षिप्त, व्यापक और जनसुलभ व्याख्या है। यह उपन्यास नहीं बल्कि विचार प्रधान गैर कथात्मक पुस्तक है जो मानव सभ्यता को अर्थशास्त्र की दृष्टि से पढ़ती है। ली कृषि के आरंभ से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभरते दौर तक यह दिखाते हैं कि भोजन, व्यापार, तकनीक, संपत्ति, संस्थाएं और प्रोत्साहन लोगों के सामूहिक निर्णयों को कैसे दिशा देते रहे हैं। पुस्तक का उद्देश्य हर ऐतिहासिक घटना को केवल आर्थिक कारणों में सीमित करना नहीं है। इसके बजाय यह बताती है कि शक्ति, युद्ध, असमानता, उपनिवेशवाद और समृद्धि को समझने के लिए आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक बाजारों के विकास और आर्थिक विचारों के इतिहास को वास्तविक सामाजिक परिणामों से जोड़ते हैं। उनकी शैली तकनीकी सूत्रों के बजाय छोटे स्पष्ट उदाहरणों और बड़े ऐतिहासिक प्रश्नों पर आधारित है। इसलिए यह पुस्तक अर्थशास्त्र को अलग विषय नहीं बल्कि मानव जीवन और विश्व इतिहास को समझने की एक उपयोगी विश्लेषणात्मक भाषा के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कृषि अधिशेष ने बसावट, विशेषज्ञता और असमानता की नींव कैसे रखी। पुस्तक की आरंभिक आर्थिक अंतर्दृष्टि यह है कि कृषि का विकास केवल भोजन उगाने की तकनीक नहीं था बल्कि सामाजिक संगठन में निर्णायक बदलाव था। शिकारी और संग्राहक समूहों की आजीविका अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष थी, जबकि खेती ने स्थायी बसावट और खाद्य अधिशेष संभव बनाया। अधिशेष का अर्थ था कि समाज के कुछ लोग खेत के बाहर भी काम कर सकते थे। इसी से कारीगर, व्यापारी, प्रशासक, सैनिक और विद्वान जैसी भूमिकाओं के लिए जगह बनी। उत्पादन में यह विशेषज्ञता तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का आधार बनी, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन खोजने में समय नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन ली इस परिवर्तन को सरल प्रगति कथा की तरह नहीं रखते। अधिशेष को संग्रहित और नियंत्रित किया जा सकता था, इसलिए संपत्ति, कर, सत्ता और वर्गभेद भी अधिक संगठित हुए। कृषि पर निर्भर समाजों में खराब फसल का जोखिम व्यापक हो सकता था और सीमित आहार या घनी आबादी नई स्वास्थ्य समस्याएं भी ला सकती थी। इस दोहरे परिणाम से पुस्तक का व्यापक तर्क स्पष्ट होता है। आर्थिक नवाचार अवसर पैदा करते हैं पर उनके लाभ और लागत समाज में समान रूप से नहीं बढ़ते। इतिहास को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि उत्पादन किसने किया, अधिशेष पर अधिकार किसका था और संस्थाओं ने उस अधिकार को किस तरह वैध बनाया। दूसरा, भूगोल, फसलें और पशु क्यों वैश्विक विकास के शुरुआती अंतर समझाते हैं। ली मानव समाजों के बीच आरंभिक विकास अंतर को समझाने में भूगोल की भूमिका पर ध्यान देते हैं। उनका संकेत यह नहीं कि किसी क्षेत्र के लोग जन्मजात रूप से अधिक सक्षम थे। केंद्रीय बात यह है कि अलग क्षेत्रों को अलग प्राकृतिक अवसर और बाधाएं मिली। यूरेशिया में घरेलू बनाए जा सकने वाले पौधों और पशुओं की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता तथा पूर्व से पश्चिम फैला भूभाग कृषि ज्ञान फसलों और तकनीकों के प्रसार में सहायक बना। समान अक्षांशों पर जलवायु अपेक्षाकृत मिलती जुलती होने से खेती की पद्धतियों को अपनाना आसान हो सकता था। इसके विपरीत उत्तर से दक्षिण फैले क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों का तीव्र बदलाव प्रसार को कठिन बना सकता था। यह ढांचा इस प्रश्न पर रोशनी डालता है कि यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका और अमेरिका के बड़े भागों पर क्यों प्रभुत्व स्थापित कर सकीं, न कि इसका उल्टा क्यों हुआ। फिर भी पुस्तक का आर्थिक दृष्टिकोण भूगोल को अंतिम भाग्य नहीं मानता। प्राकृतिक लाभ तभी स्थायी समृद्धि में बदलते हैं जब संस्थाएं, तकनीक, व्यापारिक संबंध और राजनीतिक निर्णय उनका उपयोग करें। इसीलिए भूगोल एक प्रारंभिक स्थिति है, पूर्ण व्याख्या नहीं। पाठक के लिए उपयोगी सबक यह है कि देशों की तुलना केवल वर्तमान आय या नीति से नहीं करनी चाहिए। उनके दीर्घकालिक पर्यावरणीय, ऐतिहासिक और संस्थागत संदर्भ भी परिणामों को आकार देते हैं। तीसरा, बाजार और संस्थाएं व्यक्तिगत प्रोत्साहन को सामाजिक परिणामों में बदलती हैं। पुस्तक बाजार को केवल खरीद बिक्री की जगह के रूप में नहीं बल्कि सूचना और प्रोत्साहन की व्यवस्था के रूप में देखती है। कीमतें यह संकेत देती हैं कि कौन सी वस्तु दुर्लभ है, किस उत्पादन की मांग है और संसाधनों का उपयोग कहां अधिक मूल्य पैदा कर सकता है। जब नियम अपेक्षाकृत भरोसेमंद हों, लोग निवेश, विनिमय और नवाचार के लिए अधिक तैयार होते हैं। लेकिन बाजार अपने आप निष्पक्ष या उपयोगी परिणाम की गारंटी नहीं देते। संपत्ति अधिकार, अनुबंधों का पालन, कानून का शासन और राज्य की क्षमता जैसे संस्थागत तत्व तय करते हैं कि आर्थिक अवसर किसे मिलेंगे और लाभ किसके पास जाएगा। चीन में 1980 के दशक के संपत्ति अधिकार संबंधी परिवर्तनों को पुस्तक इस बात के उदाहरण के रूप में रखती है कि उत्पादन और निवेश के प्रोत्साहन बदलने पर तेज आर्थिक परिवर्तन संभव हो सकता है। इसका व्यापक अर्थ यह नहीं कि हर देश एक ही नीति अपनाकर वैसा ही परिणाम पालेगा। संस्थागत सुधार स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक भरोसे पर निर्भर होते हैं। ली का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोगों के व्यवहार को नैतिक गुण दोष कहकर खारिज करना पर्याप्त नहीं है। यदि नियम मेहनत, बचत, उद्यम या नवाचार को पुरस्कृत करते हैं तो व्यवहार बदलता है। यदि नियम कब्जे, भ्रष्टाचार या अल्पकालिक लाभ को पुरस्कृत करते हैं तो संसाधन उत्पादक काम से हट सकते हैं। इसीलिए संस्थाओं का डिजाइन आर्थिक इतिहास का केंद्रीय विषय है। चौथा, व्यापार अवरोध, प्रवासन और युद्ध में उत्पादन क्षमता की निर्णायक भूमिका। ली बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के पीछे आर्थिक क्षमता को देखने का आग्रह करते हैं। 1930 के दशक में व्यापार और प्रवासन पर बढ़े अवरोधों का संदर्भ यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि संकट के समय संरक्षणवादी प्रतिक्रियाएं समस्या को सीमाओं के पार फैला सकती हैं। जब देश आयात, लोगों और पूंजी के प्रवाह को कठोरता से रोकते हैं तो वे घरेलू समूहों को अस्थायी सुरक्षा दे सकते हैं, पर प्रतिस्पर्धा, विनिमय और सहयोग के लाभ भी घटते हैं। पुस्तक इस प्रकार के प्रसंगों से दिखाती है कि राष्ट्रीय निर्णयों के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत पर चर्चा भी युद्ध को केवल सैन्य रणनीति का प्रश्न नहीं रहने देती। औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति, तकनीकी क्षमता, श्रम संगठन और संसाधनों तक पहुंच युद्ध की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टि सैनिकों या नेताओं की भूमिका को नकारती नहीं, बल्कि बताती है कि रणनीति को चलाने के लिए आर्थिक आधार चाहिए। इसी कारण आर्थिक इतिहास में बंदरगाह, कारखाने, ऊर्जा, श्रम बल और व्यापारिक नेटवर्क जैसे विषय केंद्रीय हो जाते हैं। आधुनिक नीति के लिए इसका निहितार्थ सीधा है। खुलापन अपने आप में पर्याप्त नहीं और आत्मनिर्भरता का दावा भी लागतहीन नहीं। समझदारी इसी में है कि देश लचीलापन, रणनीतिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लाभों के बीच वास्तविक संतुलन बनाए। आर्थिक परस्पर निर्भरता शांति की गारंटी नहीं देती, लेकिन वह संघर्ष और सहयोग दोनों की भौतिक सीमाएं बदल देती है। अंत में असमानता, जलवायु परिवर्तन और AI को आर्थिक इतिहास की निरंतरता में देखना। पुस्तक अतीत की व्याख्या को वर्तमान की समस्याओं से जोड़ती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 20वीं सदी के मध्य दशकों में असमानता के घटने का प्रश्न इस बात की याद दिलाता है कि आय वितरण किसी अपरिवर्तनीय नियम का परिणाम नहीं है। युद्ध, कर व्यवस्था, श्रम बाजार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक विकल्पों जैसे अनेक कारक आय तथा संपत्ति के बंटवारे को बदल सकते हैं। इसीलिए बढ़ती या घटती असमानता को केवल बाजार की स्वाभाविक उपज मानना अधूरा निष्कर्ष होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आर्थिक तर्क और भी स्पष्ट है। उत्सर्जन का लाभ अक्सर किसी व्यक्ति, फर्म या देश को तत्काल मिलता है, जबकि उसकी लागत व्यापक समाज और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ती है। ऐसी बाह्य लागतों के कारण केवल निजी निर्णय सामूहिक हित की रक्षा नहीं करते। नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सही प्रोत्साहन आवश्यक बनते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पुस्तक का कालखंडीय विस्तार भी यही प्रश्न उठाता है कि नई तकनीक उत्पादकता बढ़ा सकती है, पर उसका लाभ, नियंत्रण और जोखिम कैसे बांटा जाएगा? तकनीक का प्रभाव उसके अस्तित्व से नहीं, बल्कि उसे अपनाने वाली संस्थाओं, कौशलों और नियमों से तय होता है। इस अंतिम हिस्से में ली का दृष्टिकोण न अंध आशावादी है, न केवल चेतावनी पूर्ण। आर्थिक इतिहास का सबक है कि नवाचार मानव कल्याण बढ़ा सकता है, किंतु उसके परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक निर्णय और जवाबदेही अनिवार्य है। निष्कर्ष में हाउ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अर्थशास्त्र से भयभीत हुए बिना विश्व इतिहास की नई व्याख्या चाहते हैं। विद्यार्थी, सामान्य पाठक, नीति और व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोग तथा इतिहास के पाठक इससे लाभ ले सकते हैं। इसका मुख्य बौद्धिक लाभ यह है कि यह घटनाओं को अलग अलग किस्सों की तरह देखने के बजाय उत्पादन, विनिमय, प्रोत्साहन और संस्थाओं के परस्पर संबंध में देखना सिखाती है। पाठक समझ सकता है कि कृषि, संपत्ति अधिकार, व्यापारिक खुलापन, औद्योगिक क्षमता और पर्यावरणीय लागत जैसे विषय आज भी क्यों प्रासंगिक है। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता किसी तैयार नीति सूची में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने की आदत में है। उदाहरण के लिए, किसी सुधार का लाभ किसे मिलेगा, उसकी लागत कौन उठाएगा और नियम लोगों के व्यवहार को कैसे बदलेंगे। आर्थिक इतिहास पर अधिक विस्तृत ग्रंथ अक्सर किसी एक काल, देश या सिद्धांत में गहराई से उतरते हैं। ली की पुस्तक की अलग पहचान उसका संक्षिप्त दायरा और व्यापक जोड़ है। यह प्रागैतिहासिक कृषि, आधुनिक बाजार, युद्धकालीन उत्पादन, असमानता, जलवायु और AI को एक ही विश्लेषणात्मक दृष्टि में रखती है। इस संक्षिप्तता की सीमा भी है, क्योंकि जटिल विषयों का पूर्ण विवरण संभव नहीं। फिर भी यह कमी नहीं बल्कि प्रवेश द्वार की तरह काम करती है। यह पुस्तक अंतिम शब्द होने का दावा नहीं करती, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि मानव इतिहास के बड़े प्रश्नों को समझने में अर्थशास्त्र क्यों अनिवार्य, किंतु अकेला पर्याप्त उपकरण नहीं है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंड्रू ली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।